दिन भर 3 जून रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। जम्मू के अखनूर सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, बीएसएफ के 2 जवानों की मौत, भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ ने पिछले हफ्ते ही की थी बात। उत्तर प्रदेश के कैराना के सांसद तबस्सुम हसन ने की शिकायत, मेरे नाम से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा उकसाने वाला संदेश।
कोई बयान नहीं आया इस तरह का, और ना मैं कह सकती ऐसी बात, हमें हमेशा जो है हिंदू समाज का वोट मिलता है।
भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण का दावा, जानेंगे क्यों खास है ये मिसाइल।
ये बिल्कुल कैमोफ्लेज कलर्स के संग लॉन्च किया गया है, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साथ मिलके ये टेस्ट किया गया है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में 2 भारतीय जवानों की मौत पर प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर इस खून खराबे को रोकना चाहिए। चीन और अमेरिका के बीच शीर्ष स्तरीय बातचीत चीन की इस चेतावनी के साथ खत्म हो गई है कि अगर अमेरिका नए टैरिफ और दूसरी पाबंदियां लागू करता है तो दोनों देशों के बीच हुई सभी व्यापार वार्ताएं व्यर्थ हो जाएंगी। चीन की सरकार का यह बयान चीनी उप प्रधानमंत्री लियू हे और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस के बीच मुलाकात के बाद आया है। चीन ने कहा है कि बातचीत की प्रक्रिया व्यापार युद्ध न लड़ने की बुनियाद पर आधारित होनी चाहिए। विल्बर रॉस ने हालिया बातचीत को स्पष्ट और दोस्ताना बताया है। उनके दौरे से ठीक पहले अमरीका ने $50 अरब के चीनी सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उधर फ्रांसीसी वित्त मंत्री ब्रूनो ली मेयर ने कहा है कि अमरीका के पास व्यापार युद्ध शुरू होने से रोकने के लिए सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है। G7 देशों के वित्त मंत्रियों की कैनेडा में बैठक के दौरान उन्होंने कहा,
What did we ask?
हमने वित्त मंत्री से क्या करने को कहा? हमने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सामूहिक तौर पर अमरीकी गतिविधियों पर खेद और निराशा का संदेश लेकर यहाँ से जाएंगे और ये चिंता लेकर जाएंगे कि ये बातें सृजनात्मक नहीं हैं, और मुझे लगता है कि वो भी ये संदेश लेकर वॉशिंगटन लौटेंगे। ये थे फ्रांसीसी वित्त मंत्री ब्रूनो ली मेयर के शब्द। दक्षिणपंथी लीग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इटली के नए उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मातेओ सल्विनी इटली की सीमा को अवैध शरणार्थियों से बचाने के वायदे के साथ सिसिली पहुंचे हैं। वह दक्षिणी बंदरगाह पुजेलो जाएंगे, जहां शुक्रवार को सब सहारा अफ्रीका से नावों के जरिए कुछ शरणार्थी पहुंचे थे। शनिवार को एक रैली में मातेओ सल्विनी ने कहा था कि अवैध शरणार्थियों को अपना सामान बांधना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह संबंधित देशों के साथ बेहतर समझौते करना चाहते हैं ताकि शरणार्थियों के आने की घटनाओं को रोका जा सके। इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर जोनाथन हॉपकिंस कहते हैं,
Salvini is eager to reassure his voters in northern Italy that he's going to do something.
Salvini उत्तरी इटली में अपने वोटरों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो अप्रवासन के मुद्दे पर जरूर कुछ करेंगे, खासतौर पर उन शरणार्थियों के बारे में जो नावों के जरिए सिसिली जैसे द्वीपों और इटली के दूसरे दक्षिणी हिस्सों में पहुंचते हैं। वो हाल ही में गृह मंत्री बनाए गए हैं, तो उनका काम ये कहना है कि स्थिति पर मेरा नियंत्रण है और मैं इस समस्या पर कुछ करने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि उनका ज्यादातर ध्यान उत्तरी इटली में अपने वोटरों पर है। ये थे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर जोनाथन हॉपकिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के लगभग आधे बच्चे स्कूल से वंचित हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2002 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों से वंचित हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां जारी गतिरोध और सुरक्षा की बदतर हालत इसकी मुख्य वजह है और लड़कियों के साथ भेदभाव इसमें एक और प्रमुख कारण है। कई प्रांतों में 50% तक लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। नाइजीरियाई अधिकारियों ने कहा है कि जामफरा के उत्तरी प्रांत में पशु डकैतों के डाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पशु चोर मोटर बाइकों पर सवार होकर जनोका गांव पहुंचे, वहां लोगों पर गोलियां चलाईं और घरों को आग के हवाले कर दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनमें से कई इसमें मारे गए। हाल के महीनों में जामफरा में पशु डकैतों और आम लोगों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। एक इराकी अदालत ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के मामले में दोषी पाई गई एक फ्रांसीसी महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मेलिना बोगेदीर को पिछले साल मोसुल शहर से गिरफ्तार किया गया था। बीबीसी समाचार।
B बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन पा रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर हाल ही में फायरिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और दोनों तरफ जानमाल का नुकसान भी हुआ है। इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओ के बीच सहमति बनी थी कि 2003 में हुए सीज फायर समझौते का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, मगर रविवार अल सुबह एक बार फिर फायरिंग हुई। और कुछ देर पहले मैंने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से और उनसे पूछा कि अब तक उनके पास क्या जानकारी है।
जी देखिए, जो बीएसएफ सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार सुबह 2 बजे ये फायरिंग हुई है अखनूर सेक्टर में। बहुत स्ट्रेटेजिक सेक्टर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो जम्मू में पड़ता है, और इसमें बीएसएफ का कहना है कि 2 जवान तो इसमें मारे गए हैं लेकिन 2 ऑफिसर्स हैं जो इसमें इंजर्ड हैं, यानी वो घायल हो गए हैं। और बीएसएफ प्रवक्ता का ये भी कहना है कि परगवाल सेक्टर में कोई 10 बॉर्डर पोस्ट्स हैं जो कवर करते हैं कम से कम 35 बॉर्डर विलेजेस को, तो उनको निशाना बनाया गया रात के दौरान। हालांकि ये फायरिंग जो है दोबारा ऐसे समय हो रही है जब हर तरफ से जो है इसकी प्रशंसा की जा रही थी कि डीजीएमओ लेवल की मीटिंग में सीज फायर को दोबारा इंप्लीमेंट करने की बातें हो रही थी।
जी, इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं?
जी देखिए, सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक और राजनीतिक वर्गों तक इस पे जाहिर है इस पे तो चिंता ही व्यक्त की जा रही है, क्योंकि एक आशा बंधी थी कि डीजीएमओ लेवल पे जो सीज फायर को इंप्लीमेंट करने की बात हुई है उसको चाइना और अमेरिका दोनों ने उसकी प्रशंसा की थी, और ऐसा लग रहा था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि ये एक आम सीमा नहीं है कि एक रेखा हो किसी नक्शे पे, क्योंकि इस पे लाखों लोग बसते हैं उस पार भी और इस पार भी। और आपने देखा होगा कि पिछले महीने जब ये लगातार शेलिंग हो रही थी तो हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा था बॉर्डर एरिया से, लेकिन अब ये इससे जब ये दोबारा अब हुआ है तो इसमें पॉलिटिकल लेवल पे काफी रिएक्शन हुआ है। हालांकि चीफ मिनिस्टर अक्सर कहती रहती हैं कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, इससे अच्छा है क्योंकि बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उससे उस पार भी नुकसान होता है, इस पार भी नुकसान होता है। उन्होंने इस का रिटरेशन किया और कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए ताकि ये जो बॉर्डर के एरियाज है इस पे उस पार भी नुकसान होता है, इस पार भी नुकसान होता है, ताकि वहां पे शांति बहाल हो सके।
जैसा कि रियाज मसरूर बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर इस सिलसिले को रोकना चाहिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
अनफॉर्चुनेट है जो बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन हुआ और जिसमें हमारे अभी तक दो बीएसएफ जवान भी शहीद हो गए और कई हमारे सिविलियन भी जख्मी हो गए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती की बात है। डीजीएमओ के बातचीत के बावजूद ये नहीं होना चाहिए, पर इसके बावजूद हमारा ये मानना है कि यहाँ भी लोग मरे हैं, दोबारा डीजीएमओ को मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और ये जो बॉर्डर पे खून खराबा हो रहा है, शेलिंग हो रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए।
तो बॉर्डर पर हुई इस फायरिंग को लेकर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में क्या जानकारी उपलब्ध है बताने के लिए औरंगजेब जर्राल हमारे साथ बने हुए हैं। जी बताएं औरंगजेब।
जी गुज़श्ता 2 रोज से जो एलओसी के ऊपर इस साइड के ऊपर जो फायरिंग से अब्बासपुर सेक्टर में जो है वो एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है। जो गुज़श्ता दिन गुजरा है उसमें तो जो यानी दोनों साइड की सीन है वो तो अपनी चेक पोस्टों के ऊपर ही वार करते रहे, लेकिन जो एक आबादी के ऊपर वार हुआ है हमारी साइड के ऊपर, वहाँ जो एक बंदा जख्मी हुआ है। अभी तक जो जनवरी से लेकर अभी तक जो यहाँ के जो हुकाम है वो बता रहे हैं कि 21 जो डेथ हुई हैं इस तरफ जो है वो फायरिंग से क्रॉस एलओसी से, जबकि 128 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। लोग क्योंकि आजकल यहाँ पर एक रमजान मुबारक का महीना भी चल रहा है और इस वजह से सख्त परेशानी का आलम भी है कि लोगों को परेशानी है कि जब दोनों सेना जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करती हैं तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जो मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने दोनों ममालिक से जो अपील की है कि अमन सबसे बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अमन होना चाहिए और यही अमन जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है खुशहाली जो है वो पैदा करेगी। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब जर्राल। बता रहे थे कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जो ये फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, वो किस तरह से वहां पे लोग प्रभावित हो रहे हैं।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारत ने आज खुद की तकनीक से तैयार बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। इसे ओडिशा के तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से एक मोबाइल लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया। इस मिसाइल को भारत का सबसे आधुनिक मिसाइल बताया जा रहा है। कुछ देर पहले मैंने बात की विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से और जानना चाहा कि ये मिसाइल कैसे अलग है और इसके सफल परीक्षण के मायने क्या हैं।
देखिए, अग्नि 5 मिसाइल जो है वो भारत का सबसे दूर मार करने वाला मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मार कर सकता है और इसके दायरे में ज्यादातर चीन, सारा यूरोप और अफ्रीका आ जाता है। ये एक बहुत ही अहम मिसाइल है भारत के लिए और ये जब यूज किया जाएगा, वैसे तो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये वेपन ऑफ पीस मानता है भारत, अगर हो तो इसमें केवल अणुबम ही जाएगा इधर से उधर तक, क्योंकि ये बहुत ही अहम मिसाइल है। ये छठा टेस्ट था अग्नि 5 मिसाइल का। इसके पहले 5 टेस्ट हुए हैं अग्नि 5 के, जो 5 सक्सेसफुल हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने इस DRDO डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर एस क्रिस्टोफर का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था मुझे कि 2 टेस्ट होंगे और उसके बाद ये मिसाइल जो है वो इंडक्ट हो जाएगा। आज का जो टेस्ट है वो कंटेनराइज्ड मिसाइल है, मतलब ये बिल्कुल रेडी टू फायर कहीं से भी, ऑल वेदर मिसाइल होता है, रोड साइड पे कहीं से भी इसको फायर किया जा सकता है। और आज के मिसाइल में अगर आप एक खास बात देखें तो ये बिल्कुल कैमोफ्लेज कलर्स के संग लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साथ मिलके ये टेस्ट किया गया है। इसके पहले तक जो अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट होता था, हरदम उसमें वो सफेद रंग का मिसाइल होता था, आज कैमोफ्लेज कलर्स के साथ है। तो कहीं ना कहीं अब तैयारी है इस मिसाइल को आर्म्ड फोर्सेस को हैंड ओवर करने की और उसके बाद ये भारत के आर्सेनल में शामिल हो जाएगा और भारत के प्रोटेक्शन में तत्पर लग जाएगा। तो अग्नि 5 जो है बहुत अहम मिसाइल है भारत का।
जिस क्षेत्र में भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, अगर उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी से तुलना करें तो कहाँ भारत को लाके खड़ा कर देता है ये मिसाइल?
देखिए, चीन के पास बहुत लंबी दूरी के मिसाइल हैं। अब चीन की होड़ जो है वो अमेरिका से लगी है, तो उनके पास तो ऐसे मिसाइल हैं जो कि 15,000-20,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। तभी उनके पास मिसाइल हैं जो अमेरिका को भी मार कर सकते हैं। भारत का दायरा जो है वो आजू बाजू के देशों से ज्यादा है, पाकिस्तान से आपकी दुश्मनी है और थोड़ी बहुत चीन से है, तो इन दोनों को आप इस मिसाइल से कवर कर सकते हैं। और पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी काफी मिसाइल हैं और खासकर उनके कुछ मिसाइल हैं जो भारत के पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बराबरी की होड़ है भारत और पाकिस्तान में, और चीन को, भारत और चीन के बीच में अपने को परस्पर विरोधी और परस्पर वॉर से बचाने का एक तरीका है ये। तो अग्नि 5 जो है वो बड़ा अहम मिसाइल है।
अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बता रहे थे वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर पुलिस व्हाट्सएप मैसेज की जांच कर रही है, एक ऐसे मैसेज की जिसमें कैराना लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार बेगम तबस्सुम हसीन की जीत को अल्लाह की जीत और राम की हार बताया गया था। 31 मई को आए कैराना उपचुनाव के नतीजों के बाद इस मैसेज को सोशल मीडिया पर बेगम तबस्सुम हसन के बयान के तौर पर इलाके में सर्कुलेट किया गया था। नव निर्वाचित सांसद तबस्सुम हसन ने इस मैसेज को फर्जी बताया है और शामली के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं BBC संवाददाता प्रशांत चहल।
कैराना की नवनिर्वाचित सांसद तबस्सुम हसन ने उत्तर प्रदेश पुलिस से शिकायत की है कि उनके नाम से एक फर्जी पोस्ट फैलाकर इलाके में आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। कैराना में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद तबस्सुम हसन ने कहा कि अब वो हार गए हैं तो 2019 की तैयारी में लग गए हैं, चाहे तरीका सही हो या गलत।
बयान ही नहीं आया इस तरह का, ना मैं कह सकती ऐसी बात में, हमें हमेशा जो है हिंदू समाज का वोट मिलता रहा है और अब भी मेरे साथ इतने दलित वोट थे, ऐसे वोट थे और इतने जाट समाज के थे, ये तो थे ही थे, और अदर इतने भाइयों ने वोट दिया, तो
इन आरोपों को लेकर जब BBC ने कैराना उपचुनाव में असफल रही भाजपा उम्मीदवार और दिवंगत भाजपा नेता हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।
एक्चुअली ये तो आप मुझे बता रहे हैं, मुझे तो ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ना मैंने ये मैसेज देखा है, पर फिर भी इफ इट इज विद सम रॉन्ग इंटेंशन, इट इज सर्टेनली रॉन्ग।
सांसद तबस्सुम हसन ने जिन सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया है वो इस तरह की अकेली पोस्ट नहीं है जिन्हें इलाके में सर्कुलेट किया गया है। कांधला और कैराना में स्थानीय पत्रकार अमन मित्तल ने बताया कि उपचुनाव के पहले से ही कई ग्रुप बने हुए थे जिनमें ऐसी फर्जी पोस्ट अब डाली जा रही हैं। वे बताते हैं,
सिर्फ एक ऐसा मैसेज नहीं है, हमारे क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, कई तरह के ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है।
क्या इस पर चर्चा हो रही है वहाँ पे?
हाँ जी, इस पर चर्चाएं हो रही है, मतलब सामने आके चर्चा नहीं कर रहे लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, जैसे धार्मिक ग्रुप होते हैं, ग्रुप है कोई पर्टिकुलर एक वर्ग का ग्रुप है, कोई किसी वर्ग का ग्रुप है, उन वर्गों में ये लोग ये सोशल मीडिया में प्रचारित हो रहा है।
बहरहाल इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई है। शामली के पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने BBC को बताया,
कंप्लेंट में से FIR दर्ज करा ली गई है और एक टीम गठित कर दी गई है। हमारे मीडिया सेल के लोग हैं और के हैं, विवेचक हैं, और इन लोगों को शाम तक लोग रिपोर्ट देंगे कि इसमें पोस्ट डाली और पोस्ट पे क्या क्या हुआ, कैसे वायरल हुई।
कैराना में फैली इन फर्जी खबरों को लेकर राजनीतिक चर्चा गर्म है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने ट्विटर पर लिखा है, मैं ऐसी फर्जी पोस्ट को भाजपा के इशारे पर किया गया हमला मानता हूं, जो कैराना उपचुनाव के नतीजों को हिंदू बनाम मुसलमान के तौर पर देख रहे हैं। जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष JPS राठौड़ के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि कैराना में विकास के ऊपर फतवा भारी पड़ा। प्रशांत चहल, BBC दिल्ली।
अब बात करते हैं मेघालय की, जहां की राजधानी शिलांग में एक मामूली विवाद के बाद भड़की हिंसा के कारण हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दो पक्षों के लोगों के बीच कथित तौर पर मारपीट हुई और उसके बाद इस मामले को पुलिस के सामने सुलझा भी लिया गया, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर एक युवक की मौत की खबर फैली और फिर से दोनों पक्षों में हिंसा शुरू हो गई। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तक बुलानी पड़ी। आज कैसे हालात हैं और ये मामला है क्या, जानने के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा से।
देखिए, हिंसा की कोई नई घटना तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ जो स्थानीय समुदाय है, खासी समुदाय के जो लोग हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये जो पंजाबी कॉलोनी है, वहाँ स्थानीय लोग इसे हरिजन कॉलोनी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसको शहर से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और जो पंजाबी दलित सिख लोग जो वहाँ बसे हुए हैं, उनका कहना है कि भाई हम सैकड़ों सालों से, 200-250 सालों से यहाँ पर हैं और यहाँ हमारे दादा परदादा आकर बसे थे, तो हम जब राज्य ही नहीं बना था, जब स्टेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ था, तब से हम है और हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये मुद्दा अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये 12-13 सालों से ये इस पर पॉलिटिकली भी बयान आते रहे हैं, लेकिन ये तुल पकड़ने का मूल जो कारण है वो गुरुवार की शाम को एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ था। सरकारी बस में एक खलासी और एक दलित सिख, उस पंजाबी लड़की के बीच में कहासुनी हुई थी और दोनों पक्षों में हल्की सी वहां मारपीट हो गई। मारपीट होने के बाद सोशल मीडिया में इस तरह का एक र्यूमर चला कि जो खलासी था बस का, उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो बस ऑपरेट करने वाली संस्था है और स्थानीय जो संगठन है, वो सारे उस पंजाबी कॉलोनी में वहां पहुंच गए, वहां से फिर पत्थरबाजी और ये हिंसा शुरू हुई। और अब देखते ही देखते उस पूरे इलाके में आज भी कर्फ्यू है। हालांकि जिला प्रशासन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने सुबह 8 बजे से 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी थी, लेकिन जो वहां के डिप्टी कमिश्नर है PS डकार, उनका कहना है कि अभी भी सिचुएशन इस तरह की नहीं हुई है कि हम कर्फ्यू को हटा दें, इसलिए 3 बजे के बाद से उस इलाके में फिर से कर्फ्यू है। देखिए, ये जो मेघालय की राजधानी शिलांग है, इसे पर्यटन स्थल माना जाता है, इसलिए बड़े दूर दूर प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन हिंसा की वजह से ये पूरा जो माहौल है, ये जो पंजाबी कॉलोनी है, वह शहर के बीचों बीच है, बाजार में है, और उस इलाके में कर्फ्यू होने की वजह से टूरिस्ट अपने अपने होटलों में ही ठहरे हुए हैं। जिला प्रशासन के लोग अब उन टूरिस्टों को सुरक्षित गुवाहाटी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर भी एक सरकारी बयान आया है कि टूरिस्ट लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए सरकार ने उन्हें शिलांग से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था की है।
पूर्वोत्तर भारत से फिर आते हैं उत्तर भारत की तरफ। इसी साल 3 फरवरी को दिल्ली में 22 साल के अंकित सक्सेना की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक अंकित सक्सेना के अल्पसंख्यक समुदाय की एक 20 वर्षीय युवती के साथ प्रेम संबंध थे और लड़की के परिजनों को अंकित से उसका मेलजोल पसंद नहीं था। इसके बाद बहस के बाद युवती के पिता ने कथित तौर पर सड़क पर अंकित की गला रेतकर हत्या कर दी थी। अब इस घटना के ठीक 4 महीने बाद अंकित के पिता और परिवार ने आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। BBC संवाददाता भूमिका राय ने बात की अंकित के पिता यशपाल सक्सेना से और जानना चाहा कि आखिर इस आयोजन के पीछे उनकी सोच क्या है।
इस समय हम मौजूद हैं अंकित सक्सेना के पिताजी के साथ। अंकित के पिताजी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, तो सबसे पहले अंकित सक्सेना के पिताजी से ही हम सबसे पहले जानेंगे कि ये इफ्तार पार्टी देने के पीछे पूरी सोच क्या थी।
ये सोच मेरे एक मुस्लिम भाई की थी, उन्होंने ही आइडिया दिया था। अंकित सक्सेना ट्रस्ट जो मैंने बनाया है उसका मोटिव ही यही है, अमन शांति, अच्छे काम करना, प्यार मोहब्बत। तो यार भाई ने कहा था कि हमारे रोजे चल रहे हैं, वो मैं मान जान मेरा विचार है कि मैं एक इफ्तार पार्टी करूं, आप लोग साथ में खड़े हो तो पता लगेगा कि अंकित के परिवार, अंकित सक्सेना ट्रस्ट हमारे साथ मिलके ये फंक्शन कर रहे हैं अटेंड, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। मुझे अच्छा लगा उनका ये विचार, इसीलिए मैं बढ़ चढ़ के, मैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे के दोस्त सब मिलके हंसी खुशी अब कर रहे हैं। यही एक नज़रिया था, क्योंकि मुझे करना ही यही था अंकित के नाम से, इसीलिए ये रास्ता अपनाया मैंने।
अंकित को गुजरे हुए लगभग 5 महीने हो गए हैं,
हाँ।
कैसे याद करते हैं अंकल आप अभी उनको?
अगर मैं अंकित की बातें करूँगा तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मैं बहुत तड़पता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता, तो याद करना क्या बताऊँ, वो तो मेरा ही कलेजा का टुकड़ा था, कुछ नहीं कह पाऊँगा उसके लिए। ठीक है, मेरे साथ जो होगा, कमी तो पूरी नहीं होती, मगर उसकी जो चाहत है बड़ा बनने की वगैरह वगैरह, ये कमर बांध रखी है मैं, उसको नीचे नहीं आने दूँगा।
तो अभी आगे का क्या प्लान है, अब भविष्य में क्या करना का सोच रहे हैं?
अब मेरा क्या भविष्य है, मेरे बच्चे होते तो उनका भविष्य बनाता हूँ, मैं तो आखिरी सीढ़ियाँ ही हैं, जितना भी समय मेरे पास है अपने बेटे की चाहत को पूरा करने में लगा दूंगा जी जान से, कमर कस रखी है, पीछे हटने वाला नहीं मैं। हालांकि ये शुरुआत थी अंकित सक्सेना ट्रस्ट के उपलक्ष्य में, शुरुआत में ही कांटे चुभे हैं मुझे, खैर उनका काम है कांटे चुभना, मगर ये अगर मेरा ये फंक्शन होने के बाद शायद उनको महसूस होगा कि उनके कांटों ने मुझे कुछ रास्ते से हटाया नहीं, अच्छे से कर रहा हूँ, और भी आगे करूँगा, आगे ही बढ़ना है, अंकित सक्सेना का नाम नीचे नहीं आने देना।
हमारे साथ थे अंकित सक्सेना के पिताजी यशपाल सक्सेना जी, और आज इफ्तार पार्टी है और बहुत से लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया है, हम उम्मीद करते हैं ये इफ्तार पार्टी बेहद कामयाब रहे। भूमिका राय।
दुनिया की बड़ी सर्च कंपनियों में शुमार गूगल ने पटना के आदर्श कुमार को 1,20,00,000 सालाना के पैकेज की नौकरी दी है। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री है, लेकिन अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत आदर्श एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कर रहे हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये, क्या है आदर्श की सफलता की कहानी, सुनिए पटना से मनीष शांडी लिखी रिपोर्ट में।
आदर्श को बचपन से ही गणित के मुश्किल सवालों को सुलझाना बहुत पसंद आने लगा था और इसने आगे चलकर उन्हें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनने में बहुत मदद की। आदर्श को 12वीं के मैथ्स और केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 100 मार्क्स मिले थे। साल 2014 में पटना के BD पब्लिक स्कूल से 94% मार्क्स के साथ उन्होंने 12वीं पास की। इसके बाद उन्हें JEE एंट्रेंस के रास्ते IIT रुड़की के मैकेनिकल ब्रांच में दाखिला मिला। आदर्श के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनने की कहानी कुछ ऐसी है।
मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया था, ठीक है, मतलब मेरी JEE रैंक उतनी थी तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया वहाँ पे IIT रुड़की में, बट मुझे मैकेनिकल में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया मतलब वहाँ पर जाने के बाद, तो धीरे धीरे मैं मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड पहले से था जैसा बताया, तो मैं उस तरफ की चीज़ें एक्सप्लोर करने लगा, तो पहले मैं मैथ्स वैथ्स के सवाल करता था इधर उधर, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं, तो मैं ईयर में मतलब आगे चलते चलते उस फील्ड में चला गया, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ।
आदर्श इस साल कैंपस सिलेक्शन से एक कंपनी के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन इस बीच गूगल में ही काम करने वाले आदर्श के एक सीनियर हर्षिल शाह की हौसला अफजाई से उन्होंने गूगल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। इसके बाद लगभग 2 महीने तक चले कई ऑनलाइन और हैदराबाद में हुए ऑन साइट स्टेज से गुजरने के बाद उन्हें गूगल में नौकरी मिली। आदर्श इसी साल 1 अगस्त से गूगल के जर्मनी स्थित म्यूनिक ऑफिस में काम करना शुरू करेंगे। 1,00,000,000 से ज्यादा का पैकेज मिलने के बाद भी आदर्श के पांव पूरी तरह जमीन पर हैं।
पैकेज में मतलब ये बड़ा फिगर लगता है क्योंकि ये INR में होता है, पहला चीज़ तो ये है। वहाँ पर कंट्री में वो यूरोज और US डॉलर्स में जो भी चीज़ें होती हैं ऐसे होती हैं, और CTC कंबाइंड पैकेज होता है। तो यहाँ पर ये मैंने काफ़ी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन देखा है, लोगों को ये काफ़ी बड़ी फिगर लगती है ऐसे INR में देख के, बट ये वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल ही है। मतलब क्योंकि वहाँ पर लिविंग स्टाइल या कॉस्ट ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के काफ़ी हाई होते हैं कंपेयर टू यहाँ पे, मतलब टू बी ऑनेस्ट।
आदर्श के मुताबिक उन्होंने अब तक यह प्लानिंग नहीं की है कि इस पैकेज से मिलने वाले पैसे से वे क्या क्या करेंगे। फिलहाल उनके जहन में बस यह है कि उन्हें अपनी पहली कमाई से छोटे भाई अमनदीप के लिए अच्छी सी विदेशी ब्रांड की घड़ी खरीदनी है। आदर्श अपने परिवार से नौकरी के लिए विदेश जाने वाले भी पहले शख्स हैं। ऐसे में इस कामयाबी के सहारे आदर्श की मां कविता शर्मा की ख्वाहिश सिंगापुर घूमने की है, तो आदर्श के पिता बीरेंद्र शर्मा गूगल हेडक्वार्टर देखने की तमन्ना रखते हैं।
जहां भी रहेगा एज ए पेरेंट्स हम लोगों का आना जाना रहेगा, इसमें कहीं दूर ऐसा अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम अगर पूछते हैं तो अमेरिका का माउंटेन व्यू जो है, जहाँ गूगल का इसका ऑफिस हेड ऑफिस भी है, वहाँ हम लोग जाना पसंद करेंगे। हमने पसंद की बात आपने पूछा है, तो माउंटेन व्यू जो है अभी चूंकि इसका हेडक्वार्टर वहाँ है तो वहाँ से इसका थोड़ा लगाव रहेगा, तो उस परिस्थिति में अगर ये माउंटेन व्यू में रहा तो वहाँ हम लोग जरूर जाएंगे।
आदर्श ने इस साल अप्रैल में चीन के बीजिंग में हुए प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट ACM ICPC में हिस्सा लिया था। इसमें पूरी दुनिया भर से टीम आती है। इस कॉन्टेस्ट में प्रोग्रामिंग से जुड़े प्रॉब्लम्स के कोड लिखने होते हैं। भारत की 8 टीमों में उनकी टीम को दूसरा स्थान मिला, जबकि दुनिया भर की 140 टीमों में वे 56वें स्थान पर रहे थे। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
और अब समय है खेल समाचारों का। आदेश कुमार गुप्त जी हमारे साथ बैठे हुए, जी क्या कहते हैं आज के समाचार?
जी देखिए, इस समय तो चर्चा बहुत सी चीज़ों की है, जैसे IPL में हालांकि जहां तक ये स्पॉट फिक्सिंग या सट्टेबाजी नहीं कहा जा सकता, और भारत में अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरह से अरबाज खान 2,80,00,000 रुपया गवां बैठे हैं
जी,
तो ये भारत में इसको वैधानिक रूप दिया जाए या नहीं, क्योंकि पहले कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी कि शायद बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जब इतने बड़े बड़े स्टार इस तरह की बातों में इन्वॉल्व होंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है, जैसे विदेशों में ये वैध है और इसे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है, तो ज़रूर कुछ इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो खेल गतिविधियाँ, उनमें साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, और रोला गैरा की लाल बजरी पर एक एक सेट जीतने के लिए खिलाड़ी को अपना पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है। आज चौथे दौर के महिला एकल वर्ग के मुकाबले में 13वीं वरीयता हासिल अमरीका की मेडिसन केस ने 31वीं वरीयता हासिल रोमानिया की मिहाइला बुजारनेस्क्यू को 6-1, 6-4 से, और पुरुष एकल वर्ग में 7वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने 19वीं वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी को 6-2, 6-0, 5-7, 6-4 से, और दूसरी वरीयता हासिल जर्मनी के अलेक्सांद्र ज़वेरेव ने रूस के क्रेन खाजनोव को 4-7, 7-6, 2-6, 6-3, 6-3 से हराया। उधर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लीड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज तीसरे दिन पाकिस्तान की दूसरी पारी संकट में फंस चुकी है, क्योंकि उसके 6 विकेट थोड़ी देर पहले 103 रन के स्कोर पर गिर चुके थे, और पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 189 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली। दरअसल इंग्लैंड की पहली पारी 363 रनों पर समाप्त हुई। उधर कुआलालंपुर में आज से महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, जहां भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 142 रन से हार का करारा स्वाद चखाया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आदेश। और अब विदा लेने से पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर कुलदीप मिश्र से।
BBC समाचार। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में 2 भारतीय जवानों की मौत पर प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर इस खून खराबे को रोकना चाहिए। चीन और अमेरिका के बीच शीर्ष स्तरीय बातचीत चीन की इस चेतावनी के साथ खत्म हो गई है कि अगर अमरीका नए टैरिफ और दूसरी पाबंदियां लागू करता है तो दोनों देशों के बीच हुई सभी व्यापार वार्ताएं व्यर्थ हो जाएंगी। दक्षिणपंथी लीग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इटली के नए उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मातेओ सल्विनी इटली की सीमा को अवैध शरणार्थियों से बचाने के वायदे के साथ सिसिली पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के लगभग आधे बच्चे इस वक्त स्कूल से वंचित हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2002 के बाद से अब तक अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों से वंचित हैं। नाइजीरिया अधिकारियों ने कहा है कि जामफरा के उत्तरी प्रांत में पशु डकैतों के डाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोटवाल ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को दें इजाजत। नमस्कार, शुभरात्रि।